Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Kathopanishad presented by Purna Pragyaji. Thank you. Om Namah Shivaya.
अब यहाँ क्या बता रहे हैं कि आश्रय और विषय की जो बात कही थी कि अज्ञान का आश्रय क्या है तो आत्मा और अज्ञान का विषय क्या है ब्रह्म. अपने बारे में तो आप कुछ न कुछ जानते हैं, मैं हूँ यह जानते हैं, मैं ज्ञान स्वरूप हूँ, मैं चैतन्य हूँ यह भी आप जानते हैं. लेकिन वेदांत कहता है इतनी ही बात नहीं है, आपको अपनी ब्रह्मता का, अनंतता का, अपरिच्छिन्नता का बोध नहीं है. तो जो आपको अपनी अपरिच्छिन्नता का, ब्रह्मता का बोध नहीं है, तो यहाँ अज्ञान का विषय क्या हुआ तो कहा ब्रह्म. तो ब्रह्म यहाँ विषय. और आप कहेंगे कि हमने अज्ञान को जान लिया, कहीं से पढ़ पढ़ाकर आप आ गए और तो कहा बहुत बढ़िया बात है कि आपने अज्ञान को जान लिया, लेकिन समझदारी के साथ इसका कोई संबंध नहीं है. तो समझदारी के साथ इसका कोई संबंध रिश्ता नहीं. वेदांत विचार की जो शैली है, जो पद्धति है, उसमें अपनी अद्वितीय ब्रह्म रूपता को जानना होता है. और जब तक अद्वितीय ब्रह्म रूपता को नहीं जानते तब तक जीवत्व तो बना हुआ है, तब तक जीवत्व तो बना हुआ है. और उसको जब जानेंगे तब इस ये भ्रांति मिटेगी. जीवत्व तो एक भ्रांति है, तो जीवत्व तो की भ्रांति मिटेगी. तो यदि अज्ञान को ही आप जानेंगे, अपनी बेवकूफी को ही जानेंगे, तो ब्रह्म ज्ञानी नहीं होंगे, बेवकूफी ज्ञानी होंगे. क्या होंगे? तो कहा बेवकूफी ज्ञानी होंगे. इसलिए परंपरा से सुनना चाहिए. अब यहाँ पर जब हम ये पढ़े, ये मंत्र पढ़े, अपने आप पढ़ लिए, तो क्या हुआ कि इंद्रियां तो क्या है, इंद्रियों में कभी पूरा ज्ञान नहीं होता. इंद्रियों में अज्ञान साथ में लगा होता है. जैसे आंख है तो रूप को दिखाएगी किंतु शब्द को नहीं दिखाएगी. तो शब्द का ज्ञान उसके साथ लगा है कि नहीं? कान है तो कान शब्द को सुनाएंगे लेकिन रूप को दिखाएंगे नहीं. तो इंद्रियों के साथ में स्वाभाविक ही इंद्रियों में अविद्या का निवास रहता है, अविद्या का निवास रहता है. तो ऐसी जो इंद्रियां हैं, इन इंद्रियों के द्वारा जब आप ज्ञान ग्रहण करते हैं तो वह ज्ञान होता नहीं, पूरा नहीं होता है, पूर्ण नहीं होता है. तो अब ये इंद्रियां जिस विषय को दिखाएंगी तो उसमें स्वाभाविक ज्ञान और अज्ञान का मिथुनीकरण होगा. अर्थात कुछ तो ज्ञान है तब तो रूप को दिखा रही है, ज्ञानेन्द्रियां कहलाती हैं, ज्ञान उसमें उतर कर आया है. जो हमारा चैतन्य है, ज्ञान है, वह उनमें आरूढ़ हुआ है. श्रुति भगवती भी कह रही है कि उसके द्वारा ही आप देखते हैं. तो कुछ ज्ञान उसमें ग्रहण करने की शक्ति है तब वो इंद्रियां रूप को दिखा रही हैं, लेकिन अज्ञान भी साथ में लगा हुआ है. तो इसको क्या कहेंगे? ज्ञाना ज्ञान, ज्ञान और अज्ञान, इससे सृष्टि बन रही है. जैसे स्त्री पुरुष दो के संयोग से सृष्टि बनती है, आप ये जानते हो. तो उसी प्रकार से ये इंद्रियां भी ये मैथुनी सृष्टि को उत्पन्न करती हैं. इसमें कहा ना मैथुनान, उसके दो अर्थ लगा लेना. दो अर्थ क्या? एक तो यहाँ पर जैसे बताया गया कि मैथुन निमित्तान सुख प्रत्ययान विजानाति विस्पष्टम जानाति सर्वो लोका. भगवान भाष्यकार कह रहे हैं कि मैथुन जनित सुखों को वह स्पष्टतया जानता है, रूप रस गंध शब्द आदि को जानता है, और मैथुन जनित सुखों को जो जानता है कह वही ब्रह्म है. तो वही ब्रह्म है. अब इसमें क्या है, आपको विशुद्ध विज्ञान को पकड़ना है. ये हमारे पास युक्ति होनी चाहिए. कि हम उसको पकड़ें, क्योंकि जब आप अज्ञान के विषय को पर विचार करते हैं, अज्ञान के आश्रय का विचार करते हैं तो तुम पदार्थ का विचार होता है, और अज्ञान के विषय को लेकर जब विचार करते हैं तो वह तत्पदार्थ का विचार होता है। और वांछित क्या है, तो कहा कि तत् और त्वम की एकता, ये श्रुति भगवती का आदेश है, श्रुत्यादेश, ये क्या है, एतद्वै तत्। तो कहा कि ये प्रपंच को इंद्रियां उत्पन्न करके दिखा रही है, इसलिए इंद्रियां हैं तो विषय है, विषय है तो इंद्रियां हैं, एक दूसरे से सिद्धि होती है। आंख की जब आप जांच कराने जाते हैं तो सामने एक बोर्ड लगा देते हैं, पढ़ो अब इसमें च म प, आप पढ़ते हैं तो उससे आपकी आंख की सिद्धि होती है, डॉक्टर बोलता है इतना नंबर है, तो आंख से विषय की सिद्धि, रूप की सिद्धि, और रूप से आंख की सिद्धि होती है, इसको बोलते हैं मैथुन सृष्टि, मैथुनान, इनको भी आप जानते हैं, इंद्रिय और विषय को दोनों को एक साथ आप जानते हैं, और आप इस भेद भ्रांति में हैं कि यह एक त्रिपुटी बन रही है। ये पुट क्या है, जो विशुद्ध एक रस, विज्ञानिक रस, आगे दसवें मंत्र के अंत में इसका जब वो करेंगे, उपसंहार करेंगे भगवान भाष्यकार, तब वहां कहेंगे विज्ञान एक रस। तो कहा, वहां कहते हैं कि विज्ञान एक रस, अर्थात एक रस विज्ञान। अब वो क्या है कि विज्ञान एक रस नहीं है, आपने उसमें पुट बना दिए, विज्ञान एक रसम नैरंतर्येण आकाशवत परिपूर्णम ब्रह्मैव अहम् अस्मि, ऐसे भाष्यकार भगवान मां कहेंगे। तो कहा निरंतर और विज्ञान एक रस आकाश के समान, वो ब्रह्म ही मैं, वो दसवें मंत्र के भाष्य में कहेंगे। तो वह जो विज्ञान एक रस है उसमें भिन्नता नहीं है, एक रस का अर्थ है भेद नहीं होता, लगातार एक रस है, लेकिन उसमें, उस विज्ञान में, उस चेतन में मैं जानने वाला इंद्रियों के द्वारा और यह विषय, ऐसे हमने एक ही ज्ञान के तीन टुकड़े कर दिए, इसको बोलते हैं त्रिपुटी, ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय की त्रिपुटी, दृष्टा दृश्य और दर्शन की त्रिपुटी, ऐसी त्रिपुटी बनाकर और हम उस ज्ञान को देखने लगे। ये ने क्षते सुनोति इदम् जिघ्रति व्याकरोति च, स्वादु अस्वादु विजानाति तत्प्रज्ञानम् उदाहृतम्। ये जो यहाँ श्रुति भगवती समझा रही है, हमारा एक महावाक्य ही है प्रज्ञानम् ब्रह्म, प्रज्ञान ही ब्रह्म है, जिसके वहां भी पंचदशीकार बोलते हैं कि जिसके द्वारा हम देखते हैं, सुनते हैं, सूंघते हैं, बोलते हैं, कर्मेंद्रिय को लिया, जैसे यहाँ कर्मेंद्रिय में मैथुन लिया, वहां कहा व्याकरोति च, बोलते हैं, और स्वादु अस्वादु हम जानते हैं, उसको प्रज्ञान कहा गया। तो प्रज्ञान क्या है, तो कहा ज्ञाता और ये, आप बैठे हैं और बैठे बैठे आप आकाश में चंद्रमा को देखें, अब बड़ी दूर चंद्रमा है और आप यहां बैठे हैं। अब जब आप चंद्रमा को देखते हैं तो बीच में क्या है, तो आप सोचते हैं एक देश की दूरी है, एक बीच में देश की दूरी है, तो आप क्या है, ज्ञाता है, और चंद्रमा क्या है, ज्ञेय है। अब आप उसमें से ज्ञे को हटा दीजिए, चंद्रमा को हटा दीजिए, और ज्ञे के संबंध से जो आप ज्ञाता बन रहे थे, उस अपने ज्ञातापने को भी हटा दीजिए, तब क्या रह गया, केवल मात्र ज्ञान रह गया, उसी को बोलते हैं प्रज्ञान। वह प्रज्ञान है, आप ये प्रयोग करके देखना कभी, तो यह प्रज्ञान, वह प्रज्ञान, वह सीमित नहीं है, वह ब्रह्म है। प्रज्ञानम ब्रह्म महावाक्य जो आपका है प्रथम, ऋग्वेद का महावाक्य है इसलिए प्रथम है, तो उसमें कहा गया कहा प्रज्ञानम ब्रह्म, तो वह प्रज्ञान कहा ब्रह्म है। विजानाति ज्ञान पर जो जोर रहता है, तो आप जब विचार करते हैं, एक बात और सोचें, आप जब विचार करते हैं तो आप किसको देखते हैं, इदम को और तत् को देखते हैं। इदम माने यह और तत् माने वह, जिसको आप ईश्वर कह लेते हैं, परमात्मा कह लेते हैं। तो ये इदम का विचार, इदम इदम, क्योंकि इदम से अधिष्ठान को लक्षित किया जाता है, ऐसे समझो। और तत् माने वह ईश्वर, तो आप इदम का विचार करते हैं, आप तत् का विचार करते हैं, किंतु इन दोनों का विचार आप अहम के बिना नहीं कर पाते, अहम के बिना आप नहीं कर पाते। तो अहम के पेट में इदम और तत् समाया हुआ है, वो अहम के पेट में ही समाया हुआ है। तो आपका जो अहम है वह इदम से और तत् से बड़ा है। एतद् वै तत्, वो यमराज ये कहना चाह रहे हैं कि तुम्हारा जो अहम है वह इस सबसे बड़ा है, वह ब्रह्म है। तुमने भूल से, भ्रम से उसे छोटा समझ रखा है, भूल से समझ रखा है। तो कहा कि तुम उसी अहम को ढूंढ निकालो। जितना हम इदम इदम कहते हैं, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, सोचना जरा, बड़ी मजेदार बात है, चुटकी में आपको समझ में आ जाएगी। तो इदम 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 जिसको आप कहते हैं, शब्द स्पर्श रूप रस गंध के रूप में जो इदम है, तो आपकी बुद्धि में यह बैठ गया है कि इसका निषेध करना है, इसका निषेध करना है। वह अपास्य है अर्थात उसको हटाना है। और दूसरा कौन है, कहा तत् वह ईश्वर है और वह उपास्य है, उसकी उपासना करनी है, क्योंकि वह बहुत बड़ा है, सर्वशक्तिमान है, सर्वज्ञ है, तो उसकी हमें उपासना करनी है। यह भी आपकी बुद्धि में बैठ गया है ना, और इसके कारण आप जो जब अपने स्वरूप को आप देखेंगे, श्रुति, एक श्रुति भगवती आती केनोपनिषद, उसमें कहते हैं कि तदेव ब्रह्म तुम विद्धि नेदम यदिदम उपासते यन मनसा न मनुते ये नाहुर मनोमतम यद चक्षुषा न पश्यति। चक्षु लो, क्योंकि यहाँ इंद्रियों को लिया गया, मन को छोड़ो। कहा यद चक्षुषा न पश्यति, जिसको आप चक्षु के द्वारा, नेत्र के द्वारा नहीं देख सकते। ये न चक्षुंशी पश्यन्ति, ये न यहाँ भी है, जिसके नेत्र, जिसके कारण से, जिसके होने से नेत्र देखते हैं, तदेव ब्रह्म तुम विद्धि, उसको, उस प्रज्ञान को तुम ब्रह्म जानो। और इदम इदम के रूप में जिसकी उपासना कर रहे हो वह नहीं, नेदम यदिदम उपासते। श्रुतियों में एक वाक्यता है, भला विसंगति दिखे तो उसकी संगति लगानी पड़ती है। तो श्रुतियों में तो वहां कहा कि देखो, जिसकी तुम उपासना करते हो और जिसको तुम कि तुम अपासना करते हो, इदम को हटाना चाहते हो, क्योंकि बुद्धि में यह विचार बैठा है कि ये सब दृश्य को जब हम हटा देंगे, जब संपूर्ण दृश्य प्रपंच का अभाव हो जाएगा, अत्यंता भाव हो जाएगा, तब ब्रह्म की सिद्धि होगी, ऐसा एक बुद्धि में भ्रम बैठा है। लेकिन भगवती श्रुति कहती है कि तुम विषय रहे उनको, उनका मिथ्यात्व निश्चय करो, उनकी महत्ता क्यों बना रहे हो बुद्धि में, ये भ्रम है, यही भ्रांति है कि हम उनको महत्व दे रहे हैं। आकाश की नीलिमा को जब हम धो लेंगे तब हम आकाश को देखेंगे। मरु मरीचिका में जो जल दिखाई पड़ता है, पहले उस जल को हम सुखा देंगे, तब हम मरुस्थल को देखेंगे। इसी प्रकार की भ्रांतियां बैठी हुई हैं। तो इस कारण से कहा कि देखो, ये जितना भी तुम्हारा ये उपास्य अपास्य आदि है, यह सब बाधित है। दोनों का अपवाद करो, दोनों का अपवाद करो, माने इनके चक्कर में मत पड़ो, इसके चक्कर में मत पड़ो। जब आपको अपने स्वरूप का ज्ञान होता है तो यह सब बाधित ही होता है। ये दिखते हुए भी, अर्थात आप शब्द को सुन रहे हैं, रस को, इत्यादि को, लेकिन ये ज्ञान होते हुए भी आप वही हैं, आप तत्व ही हैं, आप ब्रह्म ही हैं। क्योंकि एक रस ज्ञान, जो सूर्या बाबा जी महाराज ने कहा, ज्ञान एक रस है, अज्ञान मात्र एक स्वीकृति है। उस स्वीकृति को, उस अज्ञान की स्वीकृति को यदि आप हटा दे, तो आपका आत्म चैतन्य वही एक विस्तार को प्राप्त हो रहा है, और वह ब्रह्म चैतन्य से, अधिष्ठान चैतन्य से एक ही है। चेतन और चेतन में भेद कौन बनाएगा? आपके ज्ञान में, आपके चैतन्य में, आपके अनुभव में, अनुभूति में भेद कौन बनाएगा? भेद होता ही नहीं है, वह अभेद तत्व है। अब जैसे आकाश में अनेक बिंदु हैं, ऐसे आपको बहुत सी वस्तुएं, रूप आदि दिख रही हैं। अब उस रूप को, उस बिंदु को आप देश के साथ जोड़ते हैं, काल के साथ जोड़ते हैं, और उस बिंदु को ठोस करके उसका विचार करने लगते हैं। रूप आता है जाता है, रस आता है जाता है। ये नहीं कहना कि ज्ञानी को रूप दिखता ही नहीं है, ये नहीं कहना कि ज्ञानी को स्वाद आता ही नहीं है। इसलिए विद्यारण्य स्वामी बहुत समझदार है, सावधान है। उन्होंने कहा स्वादु अस्वादु विजानाति, उसी से जानता है। ये नेक्षते शृणोति इदम्, जिघ्रति व्याकरोति च, सूंघता है, बोलता है उसी तत्व से। लेकिन वह त्रिपुटी नहीं बनाता है, क्योंकि वह विषय को ठोस नहीं करता है। वह केवल जो वस्तु सत्य है, आत्म चैतन्य, उसी को देखता है, उसी में रहता है, उसी में रमण करता है। किमत्र परिशिष्यते, और जब उसका महत्व ही नहीं है, तो अब और जानने के लिए क्या रह गया? तो ऐसी बुद्धि, धीरा बोलते आए हैं कि ऐसी बुद्धि चाहिए। तमेव धीरो विज्ञाय प्रज्ञाम कुर्वीत ब्राह्मण, यहां भी भाष्यकार भगवान ने वही कहा कि ब्राह्मण उसी में, उसी को कैसे जाने, तो उसी में अपनी बुद्धि को लगाए। तो ये जो धी, जो बुद्धि है ना, धीर में जो धी है, उसको बोलते हैं धीर धारणावती मेधा। संस्कृत में एक परिभाषा बताते हैं कि जो मेधा है, धारण करने की शक्ति, उसी को बोलते हैं धी, धी धारणावती मेधा, धारण करने की शक्ति को बोलते हैं धी। तो धी और वाक्यपदीयम जो व्याकरण का ग्रंथ है, उसमें धी को बोलते हैं प्रतिभा, प्रतिभान, अर्थात दो अर्थ आपके पास निकल कर आए, धी से दो अर्थ निकल कर आए, एक प्रतिभा और एक मेधा, दो चीज आपको आपके सम्मुख आ गई, आपको समझनी है। तो प्रतिभा क्या होता है? तो आपको, आप सुनते हैं नव नवोन्मेष शालिनी प्रतिभा, अर्थात सूझे खूब, ये तत्व विचार में खूब आपको सूझे, तो उसको बोलते हैं प्रतिभा। अच्छा, तो प्रतिभा है लेकिन धारण करने की शक्ति नहीं है, मेधा नहीं है, तो गड़बड़ हो जाएगी। कहा खूब वेदांत सुना और खूब जाना, और क्या ये भी समझा कि मैं ब्रह्म हूँ, मैं शुद्ध चेतन हूँ, नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त चेतन हूँ, मैं ब्रह्म हूँ मैं, ये आपने खूब जाना। लेकिन क्या हुआ, मेधा क्या होती है, मेधा कहते हैं अपवाद दक्षा मति, अपवाद दक्षा बुद्धि, जो जो भी विषय आता है उसके उसको महत्व नहीं देती, उसका अपवाद कर देती है। इसलिए मेधा सूक्त आदि हैं, वेदों में प्रार्थना करता है, वेद का जो जिज्ञासु है वह प्रार्थना करता है कि मुझे मेधा की प्राप्ति हो, अर्थात मैं अपवाद कर सकूं। अब का सूझता तो बहुत है लेकिन मेधा नहीं है, प्रतिभा है पर मेधा नहीं है, तो आखिरी में कहां पहुंचेंगे, कहा मोसो कौन कुटिल खल कामी, तू दयालु दीन हो, तू दानी हो भिखारी। तो अपनी पूर्णता को, अपनी अनंतता को भूल गए, फिर वही जहां बैठे थे वही देह में ही आकर बैठ गए। वो इसका क्या कारण है, तो कहा कि मेधा नहीं है। और किसी किसी के मेधा बहुत होती है, जो प्रवचन सुना वो फटाफट वैसे ही सुना दे शब्द ही शब्द, लेकिन प्रतिभा नहीं होती है, इसलिए सूझता नहीं है। इसलिए कहा दोनों को लेकर चलो, सूझे भी, और जब सूझे तो आप उसको धारण भी करें, जीवन कहीं से एक कदम धारण करें, एक राग का विचार आया उसको छोड़ दो, ये आपकी बुद्धि की सामर्थ्य है। असंगता का स्मरण करो, असंगो ही अयम पुरुष, असंगो हम, असंगो हम, असंगो हम, पुनः पुनः। तो कहा कि वो एक आपके चित्त में राग का विचार आ, ये आप कहां चल पड़े, आप जीवन मुक्ति की ओर चल पड़े। एक द्वेष के विचार को आज आपने छोड़ा तो आप जीवन मुक्ति की ओर चल पड़े। कामान यह कामयते मन्यमान, एक कामना को आपने छोड़ा, एक संकल्प को आपने छोड़ा, काम जानामिते मूलम संकल्पात किल जायते, काम किससे पैदा होता है, कहा संकल्प से पैदा होता है। तो एक संकल्प को आपने छोड़ा और आप अद्वै ब्रह्म की ओर गमन कर रहे हैं, कि देखो क्या बढ़िया। इसलिए हमारे सब साधन इस प्रकार से सिद्ध होते हैं, साधना में जीवन होना चाहिए। तो जहां के तहां वस्तु को खुद वहां के वहां नहीं बैठे रहो, पर वस्तु विषय आदि को जहां की तहां छोड़ दो, जो परिस्थिति आती है उनको छोड़ दो। इसके लिए एक बहादुरी चाहिए, एक शूरता चाहिए। हमारे गुरुदेव कहते हैं ये गेंगे फेंफे मैं करने वालों का मार्ग नहीं है, ये बहादुर का मार्ग है, ये शूरमा का मार्ग है ना? तो कहा कि ये शूरमा का मार्ग होता है, अब बृहद उरो यस्य, तो बृहद उरा यस्य ते बृहद उरा बहादुर, ऐसे एक व्युत्पत्ति बता दे बहादुर की। तो यहाँ पर आप त्रिपुटी के मूल में जो चैतन्य बैठा हुआ है, उसके शिरोभाग में जो चैतन्य बैठा हुआ है, जो ज्ञाता ज्ञानगे की त्रिपुटी बन रही है, जो रस को लेकर गंध को लेकर जो सब त्रिपुटियां बन रही हैं, तो उसके शिरोभाग में जो बैठा है उसको आप उसको देखिए, वो प्रज्ञान है, उस प्रज्ञान को देखिए। और जो उस ज्ञान को के टुकड़े हो रहे हैं उनको आप देखिए कि वास्तव में कोई टुकड़ा नहीं हो रहा। तो भिन्नमिव न पश्येत, जो पृथक पृथक करके नहीं जानता है। इसलिए आगे के मंत्रों में नहीं वो नानात्व का निषेध करेंगी श्रुतियां, नानात्व का मृत्यु समृत्युम गच्छति यह नानेव पश्यति, इसी कठोपनिषद में जो नानात्व देखता है वह वास्तव में वह देखता नहीं है। तो आप कौन है, तो देश के प्रकाशक, देशकाल वस्तु के आप दृष्टा हैं, प्रकाशक हैं। और देशकाल वस्तु में जाकर फंसेंगे तो क्या कोई अच्छी बात है? आप जो उसके संपूर्ण देशकाल और वस्तुओं के प्रकाशक हैं और संपूर्ण देशकाल और वस्तु के अधिष्ठान हैं, आप स्वयं स्वयं प्रकाश हैं, स्वरूप भूत चैतन्य हैं, उसमें दूसरी कोई वस्तु है ही नहीं। उसमें जब दूसरी कोई वस्तु है नहीं, तब आप दूसरी वस्तु को यदि स्वीकृति देते हैं तो यहाँ पर क्या है, तो कहा कि नहीं, गुरु कहते हैं कि नहीं, एतद्वै तद, वह तुम जो एक वस्तु हो वह वस्तु ही उतने रूपों में दिख रही है। तो हम जो वस्तु का एक लक्षण बना लेते हैं, समय तो हो गया, अब इसकी चर्चा कल सुनाएंगे। वस्तु का जो हम लक्षण बना लेते हैं और जो वस्तु नहीं होती उसका भी लक्षण बना लेते हैं वेदांती, इसकी चर्चा आपको कल सुनाएंगे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्, असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति।